بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارنبر نتس نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارنبر نتس پورے کا پورا دعویٰ سے متعلق ہے. پورے پارے کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں تو سب سے پہلے سورت ملک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی شان بلند کی گئی. اور کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کریں، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے کتنے قریب ہیں اور اس کی قدرتوں کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی بات ماننی بھی آسان ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ کی بڑائی نہیں معلوم ہوتی، اسی لیے وہ اس کے بڑے بڑے حکموں کو بھی معمولی جانتے ہیں. پھر اگلی سورت قلم ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا اور ان مشکلات کا تذکرہ کیا گیا کہ جس پہ جمتے ہوئے اللہ کے نبی نے لوگوں تک پیغام پہنچایا. پھر اس کے بعد سورت الحاقہ اور سورت معارج ہیں. یہ دونوں صورتیں قیامت یعنی عقیدہ بالآخرہ کو مضبوط کرتی ہیں. حقیقت ہے کہ یہ تین ٹاپک پورے 13 سال میں مکہ میں پڑھائے گئے، توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ. ان کے بغیر دلوں میں بات نہیں جاتی. بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کے یہ تین کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو بات نہیں مانتا، اور دیکھا جائے تو آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے. پھر اس کے بعد سورت نوح آتی ہے، جس میں ایک کردار دکھا دیا کہ جس نے 950 سال دعویٰ کی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن رسپانس نہیں آیا. اور حقیقت ہے کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹیڈ ہے، ریزلٹس اورینٹیڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورت جن میں بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں اور اگر انسان آپ کی بات نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ جنات کو بھیجتا ہے، اور ایک جن دائیے دین بن کر جاتا ہوا دکھتا ہے جس نے صرف ایک بات سنی اور چل پڑا اور مبلغ بن گیا. پھر اس کے بعد صرف مزمل میں ہے، جس میں دائیے دین کو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی نصیحت ہے، کیونکہ رات کا قیام دن میں بات کو اچھا بھی رکھتا ہے اور نفس کو کاٹتا بھی ہے. پھر صورت مدثر میں قم فانذر کا پیغام ہے کہ ایک دائیے دین اس ایک حکم پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی کھڑا رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، پھر اس کے بعد جس کا دل چاہے آئے، جس کا دل چاہے نہ آئے. اور پھر اسی صورت میں کچھ ایسے احکامات ہیں، جس میں خاص طور پہ نماز روزے کی بات ہے، کہ جب تک اپنا ذاتی تزکیہ نہ ہو اور اپنا تعلق باللہ ان عبادات کے ذریعے سے پختہ نہ ہو، دوسروں کو دین کی طرف نہیں بلایا جا سکتا. اور پھر آخر میں صورت قیامہ سے آخری تمہیدیں ہیں، کہ جب سب کچھ کہنے سننے کے بعد لوگ نہ مانیں تو ان کو بتا دو کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھایا جائے گا اور وہاں جا کر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کیا کیا. اور پھر آخر میں سورت دہر اور سورت مرسلات. دہر میں جنت کی ڈسکرپشن ہے اور سورت مرسلات میں جہنم کی. کیا پتہ چلا کہ دعویٰ ایک پوری پلان چیز کا نام ہے. ہم بعض دفعہ اپنے طور پہ یہ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا جی نیل پالش نہیں لگا سکتے، اچھا جی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں کہ نیچے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی نا تو ٹھیک لگے گا. میں اور آپ اگر اصل چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں الجھیں گے تو بعض دفعہ یہ ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے جیسے بچہ آپ سے بڑی بڑی باتیں پوچھے تو آپ کہیں گے بیٹا بھی یہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں، یا آپ کسی کو کوئی فرض درجے کا حکم چھوڑ کر نفل سنتوں میں الجھا دیں اور اسی پہ امت بٹ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. تو یہ تو تھا ایک جسٹ اس پارے کا. آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں سورت ملک کیا کہتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے، اور پیدا اس نے تمہیں کیوں کیا آیت 2 میں بتا دیا، لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. ان دو آیتوں کو سمجھ لیجئے تو اللہ کا مقام بھی سمجھ آ جاتا ہے اور انسان کا مقصد حیات بھی سمجھ آتا ہے. जिसको आने का मकसद ही मालूम ना हो वो करेगा कैसे वो काम। और याद रखिए, इम्तिहान के बगैर अगले दर्जे नहीं मिलते। इसमें आसन अमल की शर्त लगाकर बता दिया कि इबादत कैसी हों, मामलात कैसे हों। और आसन अमल के दो स्टेप्स होते हैं, इखलास यानी अल्लाह के लिए करना और इत्तबाए रसूल, रसूल की सुन्नतों के मुताबिक करना। इसके अलावा कोई अमल भी आसन नहीं हो सकता। दुनिया को अगर इम्तिहान का समझें तो दुनिया में जीना कैसे है ये बहुत आसानी से समझ आएगा। कमरा इम्तिहान के साथ ही वक्त की कमी का एहसास होता है, 3 घंटे का एहसास आता है जहन में, फिर कुछ पढ़ना है, सिलेबस था, डेट शीट देखी, वहाँ पहुँचे, हर चीज़ से बेनियाज होकर लिखते जाते हैं और एंड पे पेपर छिन जाता है। एक इंसान जब इस सोच के साथ जीता है तो उसको ज़िंदगी बामकसद लगती है। वो कहता है यहाँ मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए आया हूँ, या फेल होऊंगा या पास होऊंगा, या जन्नत है या जहन्नम। इसके बरक्स अगर आप इस दुनिया को फन प्लेस समझें, दुनिया में आने का मकसद फन पार्टी, तो फिर सोच बदलेगी। आप किसी पार्टी की बात करें तो मूड चेंज होने लगता है, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कौन किधर होगा, बस इन्हीं बातों में उलझ जाता है इंसान। तो बिल्कुल इसी तरह से जहन में रखिए कि जो लोग आज मनचली ज़िंदगी बसर करते हैं, जियो और जीने दो, खाओ और मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, तो उन्होंने ये पहली बात ही नहीं समझी कि हम दुनिया में आए क्यों थे। आप उस स्टूडेंट को भी कुछ अक्लमंद नहीं कहेंगे कि जो खुद ना करे पेपर इस खाम में कि मेरा साथी क्यों नहीं आया, मेरा दोस्त क्यों नहीं पहुंचा। अच्छा चलो मैं फिर पेपर करती हूँ लेकिन ये पेपर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी मर्ज़ी से एक और पेपर बनाती हूँ। बच्चा अगर आके माँ को ये बात बताए कि मुझे तो वो पेपर ही नहीं अच्छा लगा, तो माँ का दिल धक धक रहेगा, करो क्या किया था फिर, कहेगा फिर मैंने बस उसको फाड़ दिया, एक पेपर नया बनाया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने उसका बहुत अच्छे जवाब दिया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो माँ कभी भी उसको अच्छी उम्मीद नहीं दिलाएगी। ये उन लोगों की मिसाल है जो अल्लाह की शरीयत को रिजेक्ट करके या उसमें अमेंडमेंट्स करके चले और कुछ ना करे, कोई उसी पेपर में कुछ चेंजेस कर दे। एक सवाल ठीक है, इट्स ओके, ये आसान लग रहा है, दूसरा नहीं इसको बदल दो, नहीं, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन पूरा हो गया इसलिए मेरी आपकी निजात इसी में है कि हम अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दें। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक बहुत ही अहम चीज़ है कायनात पे गौर व फिक्र करवाने के बाद, क्योंकि जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और उसका चीखना और चिल्लाना सुनेंगे, जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, आयत नंबर 8 को देख लीजिए, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तो जहन्नमी क्या कहेंगे, बला कद जाना नज़ीर, बला यानी क्यों नहीं, यानी आया था हमारे पास एक डराने वाला, पर हमने क्या किया, फकज़्ज़बना, फिर हमने उसको झुटला दिया, वकुलना मा नज़ल अल्लाहु मिन शय, और हमने कह दिया अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया। लव कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िल, ये दो लफ्ज़ अपने दिल पर लिख लीजिए, जहन्नम में जाने के बाद जिस चीज़ की हसरत होगी, क्या काश हम सुनते और अक़ल इस्तेमाल करते तो आज जहन्नमियों में ना होते। फा तरफ बिज़म भी हम, वह अपने एक ही गुना का इतराफ़ बहुत है, यानी अल्लाह की बात को ना मानना या अल्लाह को ना मानना। इंजाम देख लीजिए, फसुक्ल इसखाब इस सैर, जहन्नमियों की तरह उनको हांक दिया जाएगा। इसके बरक सल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो बिन देखे रब से डर गए, असल मज़ा भी तो बिन देखे डरने में है ना, फिर मैं उनके लिए बख्शिश भी और अजरे कबीर भी है। तो ज़िंदगी अकल के साथ गुजारनी है, बे सोचे समझे नफ्स के पीछे या माशरे के पीछे नहीं जाना। हर एक अपने आप को अगर इस आयत के सामने ले ले तो बात समझ आएगी, बात आसान होगी। और सुनना हिदायत की तरफ पहला कदम होता है, जब आप सुनते हैं ना उसके बाद ही फिर कुछ करने को भी दिल करता है। हम सुनना नहीं चाहते और बहसे करते हैं दीन के नाम पर, कोई नहीं समझ आएंगी। एक बच्चा स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, यूनिवर्सिटी ना जाए और जाके बहसें करे कि मेरा ख्याल है साइंस का ये असूल है, मेरा ख्याल है 2 + 2 = 6 होते हैं, तो कोई उसको नहीं मानेगा। फिर इसके बाद कायनात में चलने फिरने की दावत दी गई और साथ ही साथ परिंदों के उड़ने पे गौर करो। आज इस पे गौर करके लोगों ने जहाज़ बना लिए लेकिन परिंदे पैदा करने वाली हस्ती तक ना पहुँच सके, आज का यही अलमी है। इन्वेंशंस भी होती हैं, रिसर्चेस भी होती हैं, लेकिन जिसने सब कुछ दिया उसको नहीं पाते और सिर्फ मखलूक में खोए रहते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला किरदार बयान करते हैं आयत नंबर 22 में, अफमई यमशी मुकिबन अला वजही, क्या वो शख्स जो मुंह उठाए चल रहा है उस शख्स जैसा हो सकता है जो सीधे रास्ते पे चलता है, और हकीकत है कि नहीं हो सकता। तो एक है वही की रोशनी में ज़िंदगी बसर करना और एक है ख्वाहिशात के पीछे जिधर दिल चाहे लग जाना, दोनों एक जगह नहीं जाएंगे। आयत 22 में आंखें कान और दिल की नेमत का एहसास दिलाया गया और उसी के साथ साथ अल्लाह सुबहान तआला ने इस बात का यकीन दिलाया कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदे किए जाएगे और तुम्हें लग पता जाएगा। आखिरी आयत शऊर को बेदार करती है, कुली नारायतु मिन असबह माउकुम गौरा, क्या तुमने देखा अगर तुम्हारा पानी खुश कर दिया जाए तो कोई है जो तुम्हारे पास जारी पानी को लेकर आएगा? तो आप पर मैं कहेंगे कोई नहीं ला सकता। फिर इसके बाद सूरह कलम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उस दौर में इल्ज़ाम थे उनका इजाला किया गया। पहले तो देखिए सूरत का नाम कलम की अहमियत है। अफसोस की बात है आज हमारे पास कलम नहीं होता और काफ़ी चीज़ें होती हैं पर्स में। हर चीज़ की जगह दूसरी चीज़ें आ गई और कलम की जगह शायद ही कोई चीज़ आई हो। लिखने पढ़ने का रिवाज दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि जो आपको लोग कहते हैं आप वैसे नहीं बल्कि आप क्या हैं, इन्नक अला खुलुकिन अज़ीम, आप अख्लाकी आला बुलंदियों पे मौजूद हैं। और वाकई हमारे नबी का अख्लाक बड़ा आला था। फिर इसके बाद मशवरा दिया गया फ़ला तुतील मुकज़्ज़िबीन आयत 8 में, आगे भी 9 में, क्यों क्या होगा अगर मैंने झुटलाने वालों की बात मान ली? वत्तुल तुतखिन फयुदखिनून, वो तुम्हें भी ढीला कर देंगे, वो चाहेंगे तुम भी अपने दीन के मामले में सुस्त हो जाओ जैसे वो हुए। फिर उसके बाद और शिद्दत से बताया गया कि हर एक की हर बात मानने वाली नहीं होती। फिर उसके बाद आयत नंबर 17 से अगली आयत में एक वाक्या है जिससे पता क्या चलता है कि अल्लाह ताला जब नेमत देता है, यानी बाग वाले का किस्सा है, जब वो उसके पास फल आता था तो वो गरीबों को बांटता था। जब वो शख्स मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमें तो किसी गरीब को कुछ नहीं देना चाहिए, तो हम रात को ही जाके फल काट लेते हैं। लेकिन रातों रात अल्लाह की तरफ से अजाब आया और वो बाग तबाह हो गया। तो पता चला कि अल्लाह की दीवी नेमतों को अल्लाह के बंदों से शेयर करें तो नेमतें बढ़ जाती हैं। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला का एक सवाल है कि अफनजुलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, क्या मुस्लिमों को मुजरमों जैसा कर देंगे? मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसे हुक्म देते हो? ऐसा नहीं हो सकता, मुराद ये है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला कुछ सवाल उठाते हैं कि तुम में से तुम्हें कैसे, अल्लाह ताला सवाल उठाते हैं कि तुम कैसे ये सोचते हो कि तुम्हें वहाँ जाके बहुत ही अच्छा कुछ मिलेगा? अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर परखना है। आयत 42 में बेबसी बताई गई, यानी उसे उनकी निगाहें झुकी होंगी, चेहरे पे जिल्लत होगी, वो दुनिया में सजदों की तरह बुलाए जाते थे जबकि वो सालिम थे। तो ये हर उस इंसान के लिए इबरत है कि जिसको आज सेहत मिली लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा रहा। और सूरत के आखिर में हज़रत यूनुस का तस्करा करते हुए कुछ नज़रे बद का तस्करा है और आपको कहा कि आप अपना काम करते जाएँ लोगों की निगाहों से बेनियास होकर। सूरत अलहाका क़यामत के नामों में से एक नाम है। बड़ी शद्दोमत से शुरू होती है सूरत, बड़ी बड़ी कौमों की तबाही के तस्करे और फिरौन और उल्टाई गई बस्तियों का तस्करा है। हज़रत नूह के दौर में एक क़यामत सुग़रा के बरपा होने का तस्करा और फिर आयत 13 में फ़ैज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी नफ़खतुन वाहिदा, असल क़यामत के आने की बात है जिस दिन ज़मीन और पहाड़ों को अल्लाह ताला एक ही चोट में रेजा रेजा कर देगा। आप सोचिए कि एकदम गाड़ी चलते चलते रुके तो चिरचिराहट होती है ना, टायर फटते हैं। ये सूरज चांद सितारे ये सब स्पिन कर रहे हैं इस वक्त। एकदम जब अल्लाह ताला इनको रोकेंगे ना तो जो आवाज़ें पैदा होंगी उसी को जहन में ले आइए। और फिर क़्यामत के कुछ मंजर पेश किए गए कि अल्लाह सुबहान तआला तशरीफ़ लाएंगे और उस दिन फिर बस दो ही चेहरे हैं। फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी आयत 19 में, जिसको दाएं हाथ में नामे माल मिला, फयकूलु हाउमा इक्रऊ किताबी, खुशी खुशी आएगा लोगों को दिखाएगा। लोग उससे पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो एक जुमला बोलेगा बस इसको हाईलाइट कर लें और अगर ये बात समझ आ जाए तो बाकी काम बहुत आसान हो जाते हैं। क्या कहेगा कि मैंने इस एहसास के साथ ज़िंदगी बसर की कि मैंने अपने हिसाब से मिलना है। हकीकत है कि हिसाब का एहसास बंदे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, ऐसे शख्स की ज़िंदगी खूबसूरत होती है। फिर इसके बाद इसका खूबसूरत अंजाम है, कैसे दिल पसंद ज़िंदगी होगी, बुलंद जन्नतें हैं, फल झुके हुए हैं, कैसे जहन में अच्छा सा तसव्वुर आता है। अल्लाह ताला हम सबको अता करे। अच्छा, इसको वहाँ सब कुछ देकर क्या कहा जाएगा? कुलू वश्रबू, खाओ और पियो, खुशी से खाओ अपने उन कामों के बदले जो तुम पिछली ज़िंदगी में कर चुके। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में कुछ काम करने वाला बना दे। अगली आयत में बिल्कुल इसका अपोजिट किरदार है, बाएं हाथ में नामे अमाल मिल लिया, हसरतें हैं, काश मुझे मेरा नामे अमाल ना मिलता, काश मेरी मौत मेरा काम तमाम करती, अपनी ज़िंदगी को मैंने ज़ाया किया, सारे कपड़े चाहे डिज़ाइनर थे सब दुनिया में रह गए, कफन पे तो कोई भी ब्रांड नहीं लिखा हुआ, जितना खूबसूरत बाथरूम बना लिया लेकिन आज तो तख्ते पे नहलाना पड़ा, मर्सिडीज़ में बैठा या लैंड क्रूज़र में बैठा, आज तो मैयत गाड़ी में जाना है। और ऐसा शख्स वहाँ दुखी होकर परेशान होगा और हसरत का शिकार होगा, कोई चीज़ आज मेरे काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मरती हमारे साथ से उठती है ना, वो हमारा नाम है। कोई कब्र में जाकर ये नहीं कहता हाय प्राइम मिनिस्टर, हाय फलां, बॉडी बॉडी किधर है, बॉडी को लाए, लाश किधर है, मैयत किधर है। कब्र में भी हिसाब किताब इसी बुनियाद पर होगा। दुनिया में थोड़ा सा अगर ओहदा बुलंद हो जाए तो बाज़ दफ़ा अकड़ आने लगती है, बाज़ दफ़ा हम लोगों को उनके कपड़ों और घरों से वैल्यूएट करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी शक्लें नहीं देखता, हमारे आमाल देखेगा। सब ख़त्म हो गया, धोखा था, दुनिया से सब चला गया, रोब दबदबा ख़त्म हो गया और एक इंसान हकीकत में वहाँ तनहा होगा। आगे कुछ काम है कि जिनके ना करने की वजह से ये सज़ा मिली। अल्लाह पर ईमान ना लाना, मिस्कीन को खाना ना खिलाना, आज ऐसे लोगों का वहाँ कोई दिली दोस्त नहीं है। फिर आखिरी आयतों में वही से मुतल्लिक कुछ इशारे हैं। आखिर में पैगाम दिया गया कि वह इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन। दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए नसीहत है, यानी ये कुरान हमें गैर महसूस तरीके से गाइड करता है और हम सीधे होते जाते हैं। और हसरत होगी काफरों को इस पे, करें क्या, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अल्लाह के नाम की तस्बीह कीजिए। फिर सूरत मारिज है, इसमें भी क़्यामत की आंखों देखी झलकियाँ नज़र आती हैं, जिसमें क़्यामत को झुटलाने वाले शख्स की बात है। 50,000 साल के बराबर एक दिन है। सब्र करते जाइए, लोग इस क़्यामत को दूर समझते हैं लेकिन वो करीब होगी। क़्यामत के दिन आसमान तलछट की तरह होगा, पहाड़ धुनकी हुई रोई की तरह होंगे। आयत 10 पे गौर कीजिएगा, वला यसअलु हमीमन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त का हाल तक ना पूछेगा हालांकि वे एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। और उस दिन मुजरिम की ख्वाहिश क्या होगी, काश आज के दिन के अजाब से मैं बच जाऊँ, अपने बेटे को देकर, बीवी को, भाई को और अपने कुंबे बिरादरी को, बल्कि ज़मीन की सारी चीज़ों को मैं दे दूँ और मैं बच जाऊँ। कहा जाएगा कल्ला, आज इन चीज़ों को अगर अल्लाह की मर्ज़ी से करें तो मज़ा आएगा, फ़ायदा भी होगा, अजर भी मिलेगा। आज इन सब चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलते हैं तो फिर आप देख लीजिए कि वहाँ जाकर इनको पेश करेंगे। क्या आज हम अपने बच्चों के नाम में इस जगह सोच सकते हैं? कोई अपने बच्चे को अपने हाथ से आग में फेंकना चाहेगा? और नौज़बिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुबालगा की है कि ऐसी है नहीं, लेकिन बस कर दिया। असल में ये वही चीज़ें हैं जो इंसान के पाँव पकड़ लेती हैं। और फिर इसके बाद कुछ खूबियाँ, जिसमें सबसे ऊपर नमाज, अला सलातिहिम दाइमून, शुरू से आखिर तक नमाज में मतवज्जो रहे, पूरी नमाजें पढ़ी, हमेशा अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाया, गुनाह हुआ फिर नमाज पढ़ी, नेकी हुई फिर नमाज पढ़ी, तन्हाई नमाज पढ़ी, सबके बीच में नमाज नमाज नमाज। और इसी तरह से बिल्कुल वही बात जो सूरत मोमिनून की आयतों में थी, वही खुलासा है। नमाज पढ़ने के बाद जो किरदार सामने आता है वो इनका होगा, अल्लाह के हकूक को पूरा करते करते बंदों के हक भी देंगे, ऐसे लोगों को जन्नतों में इज्जतें मिलेंगी। और आखिर में क्या कब्रों से निकलने की घबराहटें बयान की गईं। सूरह नूह पढ़ते ही दिल उदास हो जाता है कि कोई अल्लाह का बंदा इतना इखलास रखते हुए अल्लाह की रहनुमाई में लोगों को बुलाए और 950 साल में 70-80 लोग आए। तकरीबन हर 12 साल के बाद एक शख्स के कबूल इस्लाम की बात मिलती है। इसमें हर उस बंदे के लिए मैसेज है जो दीन के काम करने के तो उदास हो जाए कि मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई मानता ही नहीं, मैं किससे कहूँ। तो इसमें देखिएगा पुकारें हैं, बहुत दिल से पढ़ने वाली सूरत है। फिर आयत 10 और उसे अगली आयतों में इस्तग़फ़ार के फ़वाद हैं कि जब बंदा दिल से गुनाहों पे माफ़ी मांगता है और उस पे जम भी जाता है तो अल्लाह आसमान से बारिशें भी देता है, माल भी देगा, बेटे भी देगा और उसके लिए बागात और नहरें होंगी। और ये सब कुछ मिलता है कब, जब एक इंसान इस बात पर यकीन रखता है। फिर उसके बाद मुशरिकीन के कुछ बुतों के नाम है और कौम नूह के डबोए जाने की बात है और उनकी वो आखिर में दुआ है कि रब इग़फिर ली वली वालिदैया वली मन दख़ला बैतिया मोमिनन, कि अल्लाह मुझे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। तो हम भी ये दुआएं मांगे हैं ताकि अल्लाह की मदद हो। सूरत जिन पूरी की पूरी एक कहानी है, आंखों से जो देखा और कानों से जो सुना वो लाकर अपनी कौम को सुना दिया। शुरू में कुरान की खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका गाइडेंस वाला पॉइंट सामने आने लगता है। तो दीन की बात करने वालों को खूबसूरत अंदाज में कुरान पेश करना है लेकिन हकायक को बदलना नहीं है। फिर इस सूरत पूरी सूरत को पढ़ के हमें जिन्नों के बारे में भी गाइडलाइन मिलती है कि ये हमारी तरह की मखलूक है, कुछ इनके फीचर्स फ़र्क है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके भी नबी थे। और कुरान के नज़ूल की भी बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिक्योरिटी के साथ ये कुरान उतरा। आज वही कुरान हमारे घरों में है लेकिन शायद हम उसको फील नहीं करते। पहले कुरान अजब बना, फिर समीन अल खुदा बना, क्या हम इस कुरान के लिए दिल खोलेंगे? इतने प्यार से उतारी गई किताब आज हमारे हाथों में है और बहुत सारे लोग आज इसकी वो वैल्यू नहीं पहचानते जो पहचाननी चाहिए। आयत 16 में बता दिया कि अगर लोग हिदायत पे जमे रहते तो हम उनको खुला पानी पिलाते। क्यों पिलाते? या दुनिया की नेमतों की हकीकत के लिए नफ़ती ना हम फी, ताकि हम उनको आजमाएं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेमतों को पाने वाला बना दे। ये कुरान जो आज हमारे हाथों में है, ये रमज़ान के बाद भी हमारे हाथ में रहे और सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ लग जाए। और इसी में बता दिया कि मस्जिदों में शिर्क नहीं होना चाहिए, उनको लोगों के नामों और मसलकों के साथ नहीं जोड़ना, बल्कि मस्जिदें तो अल्लाह की हैं। फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल इब्तदाई दौर की वही है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के क़्याम की दावत दी गई और जिसमें बताया गया कि एक इंसान अल्लाह से ताल्लुक रातों को जोड़े तो दिन को मदद होती है। आज बहुत सारे लोगों का मसला सेल्फ कंट्रोल का है, तो रात का जागना बंदे को अपने नफ्स पे काबू पाने में मददगार होता है। और दिन को बात भी अच्छी निकलती है। फिर इसमें तबत्तुल की बात है कि सबसे कट के अल्लाह का बनना, इससे ये नहीं मुराद के कतअ ताल्लुक ही की जाए, मुराद ये कि पूरे फोकस्डली अल्लाह ताला की तरफ जुड़ना। फिर इसके बाद जहन्नुम के कुछ मनाजिर हैं जो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तरतीलुल कुरान की बात है, अच्छा कुरान पढ़ा जाए तो दिलों पर असर रहता है, बहुत ज़्यादा रूल्स में पढ़कर कुरान की खूबी को नहीं ख़त्म करना। फिर आखिरी रुकू में नफिल नमाज में बहुत ज़्यादा तवालत रखना या उसको लंबा करके पढ़ना कुछ लोगों को मसले में डाल देगा। नबी सल्लम का काम यही था, अकेले में नमाज पढ़ते तो तवील पढ़ते, दूसरों के साथ पढ़ते तो मुख्तसर करते। ये हमारे दीन की खूबसूरती है। सूरत मुद्दसर का थीम कुम फानजिर, खड़े हो जाइए और डराइए, इब्तदाई वही है। एक दाइये दीन को अपने कपड़े भी साफ़ रखने हैं, अपना किरदार भी साफ़ रखना है, हर किस्म की गंदगी कीचड़ को अपने से दूर करना है। फिर क़यामत के मनाजिर, और एक ऐसा किरदार पेश किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, उसके बुरे अंजाम की बात है, और साथ ही साथ जहन्नम के दारोगाओं का जिक्र है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ खोल के कुरान में पेश कर दी। अब कितने लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं? आयत 38, खुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर बंदा अपने आमाल के इवज गिरवी है। अच्छे अमल करते जाएंगे तो अपने जिस्म को जहन्नम से आज़ाद कराते रहेंगे। बड़ी अहम आयत है 40 और उससे अगली, फी जन्नत यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल किया? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहली चीज़ नमाज नहीं पढ़ते थे, फिर मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, फिर हम दीन के बारे में बहसें करते थे, फिर हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो इन सारे कामों से अपने आप को दूर करना है इंशाल्लाह, ताकि क़यामत के दिन की हसरत से बचें। फिर बार आखिर में जिक्र किया उन लोगों का जो कुरान के तस्करे से या अल्लाह की बात सुनकर ऐसे भाग जाते हैं जैसे गधा शेर को देख के भाग जाता है। तो कुरान से भागना नहीं है, इसकी रोशनी में ज़िंदगी बसर करना है। सूरत क़यामत इंसान को एहसास दिलाती है कि उसकी एक एक पोर को अल्लाह ताला जानते हैं और क़यामत के दिन पकड़ेंगे, और जब क़यामत के दिन इंसान लाया जाएगा तो उस वक़्त कोई बचने की छुपने की जगह नहीं होगी। और आयत 13, युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा वअख्खर, उस दिन इंसान को पता लग जाएगा उसने आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा, क्या प्रायोरिटीज़ थी, क्या पीछे छोड़ दिया, किस चीज़ को अहम समझा, किस को गैर अहम समझा। और आयत 20 में बता भी दिया कि कल्ला बल तो हिब्बू नलाजिला, हुब्बे दुनिया हर गुनाह का सर है, एक हदीस से ये बात पता चलती है। तो जब दुनिया ही को लेना चाहें और हराम से मिले तो भी, हलाल से मिले तो भी, तो ऐसे लोगों का फिर अंजाम बुरा होगा। और कुछ चेहरे खुश होंगे, कुछ नाखुश होंगे, और आखिर में जानकनी का मंदिर है, कल्ला इज़ा बलगत तौराकी, आयत 26 और उससे आगे। हर एक अपनी मौत को सामने रखे तो दुनिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर इंसान को गाफिल नहीं करती और आखिरत करीब महसूस होती है। सूरत दहर में जन्नत के तस्करे हैं, नेमतों को अल्लाह ने इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया, और साथ ही बता दिया कि इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सब कुछ बना दिया, चाहो तो कदरदान बन के इन नेमतों से अच्छे काम ले लो और चाहो तो नशुक्रे बन जाओ। और जन्नत का इतना प्यारा मंजर है इसमें कि एक रिवायत में आता है कि एक सहाबी बेहोश हो गए थे या गालिबन उनकी जान रूह परवास कर गई, ये सोचकर कि इतनी प्यारी जन्नत है। और इससे आखिरी सूरत, सूरत मुरसलात में यही कुछ जहन्नम के लिए, अल्लाह ताला आपको मुझे जहन्नम से बचाए और मैं और आप इस ज़िंदगी को एक शऊर के साथ बसर करें, ऐसा ना हो कि आज यहाँ 4 दिन के मज़े लेते लेते कल वहाँ हमेशा की रसवाई हो। पूरे पारे से सीखा है कि अल्लाह से बिन देखे डरना है, उसकी निशानियों में गौर करना है, लोगों के साथ नेकी और भलाई करने वाला बनना है, किसी की गीबत नहीं करनी, जो नेमत अल्लाह ने मुझे दी उसमें दूसरों को शरीक करना है, नेकी पर इस्तकामत इख्तियार करनी है, अल्लाह के लिए की गई गवाही पर कायम रहना है, कुरान पर इसलिए अमल करना है क्योंकि ये हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, तहज्जुद की आदत भी डालनी है, गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, अपने आप को और माहौल को साफ रखने की कोशिश करनी है, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनना है, और चेहरों को तरोताज़ा रखने के लिए नमाज की पाबंदी रखनी है, सुस्ती छोड़नी है, अच्छे कामों की हिफाजत करनी है, आखिरत के हिसाब की फ़िक्र करनी है, ताकि नामे अमाल दाएं हाथ में मिले, और आफियत और हिफाजत की दुआ करते हुए सोचते समझते इस दुनिया से गुजरना है, सजदा कर सकने पर भी अल्लाह का शुक्र करते हुए सजदा करना है कि उसने हमें यह तौफीक दी, और इसी तरह नमाजों की हिफाजत करते हुए अल्लाह की अजमत को पहचानना है, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है, अल्लाह के नाम पर किए गए हद और कमिटमेंट्स पूरी करनी है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कुछ भी इस दुनिया में रखा है उससे बेहतरीन हिस्सा लेना है, اس پارے میں سے بہت ساری آیتیں تدبر تھیں، لیکن خاص طور پہ جس پہ آج ہم غور کریں گے وہ ہے آیت نمبر 10 سے اگلی آیتیں سورۃ معارج کی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جسے پناہ دیتا تھا، اور وہ زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، ہرگز نہیں، انہا لزا، یہ تو ایک بھٹکتی ہوئی آگ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ غور کرتے ہوئے اپنی اصلاح والا بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔